नमस्ते, आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स की। ये हमारे आसपास की दुनिया को चलाने वाली एक बुनियादी ताकत है ना?
बिल्कुल। सोचिए जरा, हमारे लगभग सारे गैजेट्स, उपकरण सब इसी इलेक्ट्रिक करंट पर चलते हैं। तो आज हम इसी के काम करने के तरीके और इसके दिलचस्प प्रभावों को समझने की कोशिश करेंगे।
हाँ, जैसे ये जानना कि पंखा कैसे घूमता है या दरवाजे की घंटी इलेक्ट्रिक बेल वो कैसे बज उठती है, ये सब इसी से जुड़ा है।
तो चलिए इसे थोड़ा और करीब से जानते हैं।
हाँ, इस चर्चा में हम दो मुख्य प्रभावों पर ध्यान देंगे। एक तो है करंट का हीटिंग इफेक्ट, मतलब गर्मी पैदा करना, और दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी वो चुंबक जैसा बर्ताव करना। दोनों ही बड़े काम के हैं।
शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, इलेक्ट्रिक सर्किट से।
सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है क्या ये असल में?
ये बस बिजली के बहने का एक पूरा बंद रास्ता है।
हाँ,
आप कह सकते हैं एक क्लोज्ड पाथ।
अगर रास्ता कहीं से भी टूटा तो करंट बहना बंद। अच्छा, मतलब करंट को चलने के लिए एक पूरा चक्कर लगाना जरूरी है। और इस रास्ते में होता क्या क्या है?
देखिए, एक तो चाहिए सोर्स, जैसे कि एक सेल या फिर कई सेल्स को जोड़कर बनाई गई बैटरी। ये क्या करते हैं कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलकर करंट पैदा करते हैं।
हाँ, जैसे टॉर्च या रिमोट में लगते हैं, वो एक के पीछे एक सही तरीके से लगे होते हैं।
बिल्कुल। उसमें एक सेल का पॉजिटिव सिरा दूसरे के नेगेटिव सिरे से जुड़ता है, उसे सीरीज कनेक्शन कहते हैं। उससे ज्यादा ताकत, ज्यादा वोल्टेज मिलता है। फिर चाहिए तार, वायर्स।
तार? हाँ,
जो आमतौर पर धातु के होते हैं, क्योंकि वो अच्छे कंडक्टर्स हैं, मतलब बिजली को आसानी से बहने देते हैं।
और इन तारों से जुड़ा होता है कोई उपकरण, जिसे टेक्निकल भाषा में शायद लोड कहते हैं।
बिल्कुल,
जैसे कि एक बल्ब।
हाँ बिल्कुल, बल्ब, पंखा, हीटर, कुछ भी जो उस बिजली का इस्तेमाल करे।
और आखिर में एक सबसे जरूरी चीज, स्विच।
स्विच, हाँ, ऑन ऑफ करने के लिए मर्जी के मुताबिक सर्किट को जोड़ सकें या तोड़ सकें, मतलब करंट के बहाव को चालू या बंद कर सकें।
तो करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है।
इनके बिना मतलब कोई जटिल सा सर्किट हो तो उसे समझना या बनाना बहुत ही मुश्किल होता। ये एक तरह की यूनिवर्सल लैंग्वेज है इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस के लिए।
सही बात है। चलिए अब करंट के पहले प्रभाव पर आते हैं, हीटिंग इफेक्ट। ये क्या बला है?
अरे ये तो बहुत आम है। जब करंट किसी तार से गुजरता है तो तार उसे रोकने की थोड़ी, आप कहें तो, कोशिश करता है।
अच्छा।
हाँ, इसी रुकावट, जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं, उसकी वजह से तार गर्म हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हथेलियों को रगड़ने से गर्मी पैदा होती है ना।
हाँ हाँ, बिल्कुल।
और इसके उदाहरण तो घर घर में है, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर या गीजर का एलिमेंट।
हाँ, वो कॉइल जैसा
जो लाल होकर गर्मी देता है, या फिर वो पुराने जमाने वाले पीले बल्ब्स जिनका पतला सा तार, फिलामेंट, इतना गर्म हो जाता था कि रोशनी देने लगता था।
हाँ, वो इनकैंडेसेंट बल्ब्स।
हाँ, हालांकि आजकल उनकी जगह ज्यादातर फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, CFLs,
हाँ CFLs,
कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप्स, और खासकर LEDs यानी लाइट एमिटिंग डायोड्स ने ले लिए।
हाँ, LEDs तो बहुत कॉमन है अब।
ये ज्यादा बिजली बचाते हैं और गर्मी भी बहुत कम पैदा करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी में एक बड़ा कदम है ऊर्जा बचाने की दिशा में।
पर ये हीटिंग इफेक्ट सिर्फ रोशनी या गर्मी देने के ही काम नहीं आता है ना? मैंने सुना है सुरक्षा में भी इसका कुछ रोल है।
बिल्कुल, और यहीं पर मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। इसी हीटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल होता है हमारे घरों के दो जरूरी सेफ्टी डिवाइसेस में, एक तो इलेक्ट्रिक फ्यूज और दूसरा MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स।
हाँ, फ्यूज तो देखा है कई पुराने बोर्ड्स में, वो चीनी मिट्टी का होल्डर जिसमें पतला सा तार लगा होता है। और MCBs तो आजकल हर घर के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में दिखते हैं, वो स्विचेस जैसे लगते हैं। पर इनकी जरूरत क्यों पड़ती है?
जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कभी कभी ना हमारे घर के सर्किट्स में जरूरत से ज्यादा करंट बहने लगता है। इसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं, ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट।
ओवरलोड मतलब
एक साथ बहुत सारे चीजें चलाना। हाँ बिल्कुल, मतलब एक ही सॉकेट में बहुत सारे हेवी अप्लायंसेस लगा देना, जैसे हीटर भी चल रहा है, प्रेस भी, माइक्रोवेव भी, सब एक साथ। इससे क्या होता है कि सर्किट पर क्षमता से ज्यादा बोझ पड़ता है और वो ज्यादा करंट खींचने लगता है।
अच्छा।
और शॉर्ट सर्किट वो तब होता है जब लाइव वायर, जिसमें करंट आ रहा है, और न्यूट्रल वायर, जिससे करंट वापस जा रहा है, कहीं से सीधे एक दूसरे को छू जाते हैं बिना किसी उपकरण यानी लोड से गुजरे।
ओह, ये कैसे हो सकता है?
अक्सर तारों की इंसुलेशन खराब होने से हो जाता है। इसमें रेजिस्टेंस एकदम कम हो जाता है और बहुत तेजी से बहुत ज्यादा करंट बहने लगता है।
और इन दोनों ही सूरतों में खतरा है आग लगने का डर।
बहुत ज्यादा। ज्यादा करंट से तार बेहद गर्म हो सकते हैं, पिघल सकते हैं, आपके उपकरण जल सकते हैं, और सबसे बुरा, हाँ, आग लगने का कारण बन सकते हैं।
तो फ्यूज और एमसीबी इसी खतरे से बचाते हैं? पर कैसे?
फ्यूज में एक खास धातु का बना पतला तार होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट यानी पिघलने का तापमान कम रखा जाता है।
अच्छा।
जैसे ही करंट एक सुरक्षित सीमा से ज्यादा होता है, हीटिंग इफेक्ट के कारण ये तार इतना गर्म होता है कि
पिघल जाता है। हाँ।
तार के पिघलते ही सर्किट टूट जाता है और करंट का बहना फौरन रुक जाता है। तो एक तरह से ये अपनी जान देकर सर्किट को और आपके उपकरणों को बचा लेता है।
वाह! और एमसीबी वो कैसे काम करता है?
एमसीबी थोड़ा ज्यादा एडवांस्ड है। ये असल में एक ऑटोमेटिक स्विच है। इसके अंदर भी ऐसी व्यवस्था होती है जो ज्यादा करंट को भांप लेती है, कभी हीटिंग इफेक्ट से, कभी मैग्नेटिक इफेक्ट से, या दोनों का इस्तेमाल करके।
अच्छा।
जैसे ही करंट तय सीमा से ज्यादा होता है, ये अपने आप ट्रिप कर जाता है, मतलब ऑफ हो जाता है और सर्किट को तोड़ देता है।
और सबसे बड़ा फायदा ये है कि फ्यूज की तरह इसे बदलना नहीं पड़ता, बस ऊपर कर दो।
हाँ, यही इसकी खूबी है। एक बार जिस वजह से वो ट्रिप हुआ, ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट, उस गड़बड़ी को आप ठीक करके एमसीबी को वापस मैनुअली ऑन कर सकते हैं। इसीलिए आजकल घरों में फ्यूज की जगह एमसीबी को ज्यादा तरजीह दी जाती है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें ना, तो ये ज्यादा सुविधाजनक और भरोसेमंद भी हैं।
ये तो हुई हीटिंग इफेक्ट की बात। अब आते हैं करंट के दूसरे और शायद ज्यादा रहस्यमय से लगने वाले प्रभाव पर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट।
रहस्यमय तो था कम से कम 1820 तक, जब डेनमार्क के वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ओयस्टेड ने इसे, आप कह सकते हैं कि संयोग से खोजा।
अच्छा, कैसे?
उन्होंने देखा कि जब एक तार में से इलेक्ट्रिक करंट बहाया जाता है तो पास रखी कॉम्पस की सुई हिलने लगती है।
कॉम्पस की सुई? वो तो छोटी सी मैग्नेट होती है और वो तो सिर्फ दूसरे मैग्नेट के पास ही हिलती है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि करंट वाला तार भी मैग्नेट बन जाता है?
बिल्कुल यही। ओयस्टेड की इस एक ऑब्जर्वेशन ने, इस खोज ने दुनिया बदल दी। इसने पहली बार बिजली और चुंबकत्व माने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच एक गहरा रिश्ता साबित किया। ये दो अलग अलग लगने वाली ताकतें असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
तो कोई भी तार जिसमें करंट बह रहा है वो एक मैग्नेट की तरह काम करेगा, थोड़ा सा ही सही।
हाँ, वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। हालांकि एक सीधे तार का मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत कमजोर होता है, जैसा आपने कहा।
तो फिर इसे मजबूत कैसे बनाते हैं अगर हमें ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट चाहिए तो?
इसका तरीका है तार को एक कॉइल के रूप में लपेटना, मतलब गोल गोल कई फेरे बनाना। और अगर इस कॉइल के अंदर लोहे जैसा कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख दें, जिसे कोर कहते हैं।
अच्छा, लोहे की रॉड जैसा कुछ।
हाँ, तो ये असर कई गुना बढ़ जाता है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट।
अच्छा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक तरह का अस्थाई मतलब टेम्परेरी चुंबक है जो तभी तक चुंबक रहता है जब तक कॉइल में करंट बह रहा है।
एकदम सही। करंट चालू करो, चुंबक बन गया। करंट बंद करो, चुंबकत्व लगभग खत्म। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है, इसका कंट्रोल।
और इसकी ताकत को कंट्रोल भी कर सकते हैं, कम या ज्यादा?
हाँ बिल्कुल। दो मुख्य तरीके हैं, या तो कॉइल में फेरों की संख्या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, या फिर कॉइल में बहने वाले करंट की मात्रा बढ़ा दो। दोनों से इलेक्ट्रोमैग्नेट ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है।
ये परमानेंट मैग्नेट जो फ्रिज पे चिपके रहते हैं या स्पीकर्स में होते हैं उनसे तो काफी अलग है। इनके क्या उपयोग हैं फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के?
बहुत सारे। इनकी ये कंट्रोल करने की क्षमता इन्हें बेहद उपयोगी बनाती है। जैसे बड़ी बड़ी क्रेन्स में लगे शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भारी लोहे का सामान, स्क्रैप मेटल वगैरह उठाने के काम आते हैं।
हाँ, देखा है मैंने डिस्कवरी चैनल पर।
हाँ, कबाड़ के ढेर से लोहा और स्टील अलग करने में इनका इस्तेमाल होता है।
और आप कह रहे थे डॉक्टर भी इस्तेमाल करते हैं?
हाँ, कभी कभी अगर आंख में गलती से लोहे का कोई छोटा कण गिर जाए तो उसे निकालने के लिए डॉक्टर बहुत छोटे और नाजुक इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और एक बहुत ही आम उदाहरण है हमारे घरों की इलेक्ट्रिक बेल।
हाँ,
इलेक्ट्रिक बेल, दरवाजे की घंटी, वो कैसे काम करती है? उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है?
बिल्कुल। इलेक्ट्रिक बेल इसी मैग्नेटिक इफेक्ट का एक क्लासिक उदाहरण है। इसमें एक यू शेप का इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जिसके ठीक सामने लोहे की एक पत्ती, जिसे आयरन आर्मेचर कहते हैं, लगी होती है।
अच्छा।
इस पत्ती से एक हथौड़ा, हैमर जुड़ा होता है और पास में एक धातु की कटोरी, गोंग होती है।
और एक स्विच और बैटरी तो होगी ही सर्किट पूरा करने के लिए, है ना?
हाँ, वो तो जरूरी है। अब देखिए होता क्या है, जैसे ही आप बाहर का स्विच दबाते हैं,
हाँ,
पहला सर्किट पूरा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की कॉइल में करंट बहता है और वो फौरन एक चुंबक बन जाता है।
ठीक है।
दूसरा, ये चुंबक लोहे की पत्ती आर्मेचर को अपनी ओर खींचता है।
खींचता है।
तीसरा, आर्मेचर के खींचने से उससे जुड़ा हैमर तेजी से गोंग पर चोट मारता है और टन की आवाज आती है।
ओके, आवाज तो आ गई, पर घंटी लगातार कैसे बजती रहती है जब तक बटन दबाए रखो?
हाँ, यहीं पर इसका इंजीनियस डिजाइन काम आता है। देखिए, जैसे ही आर्मेचर इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ खिंचता है ना,
हाँ,
ठीक उसी वक्त उसका कनेक्शन एक कॉन्टैक्ट स्क्रू से टूट जाता है। ये स्क्रू भी सर्किट का ही हिस्सा होता है।
अच्छा, मतलब हथौड़ा गोंग पर लगते ही सर्किट टूट गया।
एग्जैक्टली।
हाँ,
और सर्किट टूटते ही इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट जाना बंद हो जाता है। करंट बंद तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का चुंबकत्व भी खत्म, वो अब चुंबक नहीं रहा।
और जब चुंबकत्व खत्म तो वो आर्मेचर को खींचना बंद कर देगा, वो वापस चली जाएगी।
बिल्कुल, आर्मेचर स्प्रिंग जैसा होता है, वो अपनी जगह वापस लौट जाता है और वापस लौटते ही उसका कनेक्शन फिर से कॉन्टैक्ट स्क्रू से जुड़ जाता है।
अरे वाह, मतलब सर्किट फिर से पूरा हो गया।
हाँ, सर्किट जुड़ते ही इलेक्ट्रोमैग्नेट फिर से चालू।
फिर खींचेगा
वो, फिर आर्मेचर को खींचेगा, हैमर फिर गोंग पर लगेगा, सर्किट फिर टूटेगा, और ये साइकिल बहुत तेजी से चलता रहता है, टक 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 टक, जब तक आप स्विच दबाए रखते हैं। इसी से वो लगातार बजने वाली आवाज पैदा होती है।
कमाल है, मतलब करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट ही आर्मेचर को खींचता है और आर्मेचर की हरकत ही करंट को बार बार तोड़ती और जोड़ती है। एक तरह का ऑटोमेटिक मेक एंड ब्रेक सिस्टम बन गया ये तो।
आपने बिल्कुल सही समझा, ये इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म के तालमेल का एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत प्रभावी उदाहरण है।
तो आज हमने इलेक्ट्रिक करंट और उसके प्रभावों के बारे में काफी कुछ समझा। हमने देखा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, उसके हिस्से क्या हैं और उसका बंद होना क्यों जरूरी है। हमने सर्किट डायग्राम्स और उनके सिंबल्स के महत्व को भी जाना।
हाँ, फिर हमने करंट के हीटिंग इफेक्ट पर बात की, जिससे बल्ब रोशनी देता है, हीटर गर्मी देता है, और कैसे इसी प्रभाव का इस्तेमाल करके फ्यूज और एमसीबी जैसे सेफ्टी डिवाइसेस हमें खतरों से बचाते हैं। हमने ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट को भी समझा।
और आखिर में हमने करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट की दुनिया में कदम रखा, अर्स्टेड की खोज से लेकर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बनने, उनकी खासियत और उनके उपयोग, खासकर इलेक्ट्रिक बेल के काम करने के तरीके को डिटेल में समझा। तो इस सब का निचोड़ क्या है, सार क्या है?
निचोड़ ये है कि इलेक्ट्रिक करंट को बहने के लिए एक पूरा रास्ता यानी सर्किट चाहिए, और जब यह बहता है तो ये मुख्य रूप से दो दिलचस्प काम कर सकता है, या तो गर्मी पैदा करना हीटिंग, या फिर चुंबकत्व पैदा करना मैग्नेटिज्म। ये दोनों प्रभाव देखने में भले ही अलग लगें, पर ये हमारी आधुनिक जिंदगी के लगभग हर पहलू में किसी ना किसी रूप में मौजूद हैं। इनसे ही हमारी दुनिया चल रही है एक तरह से।
सही कहा, इन बुनियादी सिद्धांतों को समझने से ही पता चलता है कि हमारे इर्द गिर्द की टेक्नोलॉजी वो कैसे काम करती है।
बिल्कुल, और ये जानना कि बिजली और चुंबकत्व आपस में इतने गहरे जुड़े हैं, ये सिर्फ एक वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, ये हमारी पूरी टेक्नोलॉजिकल सभ्यता का आधार है।
तो ये थी हमारी आज की बातचीत इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स के अहम पहलुओं पर।
हाँ, और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। देखिए, ऑस्टेड ने तो सिर्फ ये देखा कि करंट से कंपस हिलता है, एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी।
हाँ।
लेकिन इसी एक अवलोकन ने दरवाजा खोल दिया। बाद में माइकल फैराडे जैसे वैज्ञानिकों ने सोचा, अगर बिजली से चुंबक बन सकता है तो क्या चुंबक से बिजली भी बन सकती है?
अच्छा, उल्टा सवाल।
हाँ, और इसी सवाल के जवाब ने दुनिया को इलेक्ट्रिक जनरेटर्स और ट्रांसफॉर्मर्स दिए, जिनसे आज हमें बिजली मिलती है। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी वैज्ञानिक खोज, एक जिज्ञासा, आगे चलकर पूरी दुनिया को बदलने वाली तकनीक को जन्म दे सकती है। बिजली और चुंबकत्व का ये जुड़ाव, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं, ये प्रकृति की सबसे मूलभूत शक्तियों में से एक है। और सच पूछिए तो हमारी आधुनिक दुनिया इसी की देन है।